हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 156। अगली सुबह पहली किरणें खिड़की से दाखिल हुईं। जैसे ही अंबिका ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वेदांश की बाहों में होने के कारण उसे गर्माहट महसूस हुई। वो वेदांश की बाहों में सोई हुई थी। वेदांश की बाहें उसके चारों ओर इस तरह लिपटी हुई थीं, मानो वो उसे हमेशा के लिए पकड़ लेना चाहता हो। अंबिका ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान थी, पर आंखों में एक सवाल। रात की बात याद आने पर अंबिका के मन में कई सवाल उठे। क्या है हमारा रिश्ता? कल रात के बाद क्या मेरे मन में कोई शक बचना चाहिए? मैं अपना पूरा 100% देना चाहती हूँ, लेकिन दे क्यों नहीं पा रही? इस रिश्ते में मुझे क्यों इतना सोचना पड़ता है? क्यों इतनी झिझक है? क्यों सब कुछ नॉर्मल नहीं है हमारे बीच? अंबिका ने अपने आप से बात करते हुए कहा, क्या हम कभी सच में पति पत्नी बन पाएंगे? और क्या सच में तुम उस रात त्रिशा के साथ नहीं थे? फिर वो मैसेज, पर मैं तो सिर्फ एक त्रिशा को जानती हूँ, पता नहीं और कितनी लड़कियाँ होंगी तुम्हारी जिंदगी में जिनको मैं जानती तक नहीं, और मैं भी बस उनमें से ही एक हूँ शायद। अंबिका ने एक गहरी सांस ली, अपनी उलझी हुई सोच को समझने की कोशिश की। वो अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए बिस्तर से उठने लगी। वो पूरी तरह से उठने ही वाली थी कि वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। वेदांश के नज़दीक खींचने पर अंबिका उसके ऊपर गिर गई। उसने चौंकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सुबह हो चुकी है। वेदांश ने उसे कमर से पकड़ रखा था। वो थोड़ी देर पहले जाग गया था। उसने अंबिका की कुछ बातें सुन ली थीं और उसके चेहरे से भी वो अंदाज़ा लगा सकता था कि अंबिका के मन में क्या चल रहा था। वेदांश ने अंबिका की आंखों में झांकते हुए बहुत प्यार से पूछा, अभी भी तुम्हारे मन में शक है ना मुझे लेकर? देखो प्लीज़, मुझे पता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम मुझ पर भरोसा कर सको, लेकिन अब से मैं तुम्हारा भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। लेकिन क्यों? अंबिका ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे बीच। मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं हूँ। तुम्हारी लाइफ में मैं बस तुम्हारी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लड़की हूँ, और कुछ नहीं। अंबिका ने ये कहते हुए महसूस किया कि उसकी आवाज़ में दर्द है, क्योंकि वो दर्द उसे दिल में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वेदांश ने हड़बड़ी में कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ बोला है? हाँ, शायद पहले बोला था, बहुत पहले, जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी, तब वो भी शायद गुस्से में, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि इतना कुछ बदल चुका है हमारे बीच, और तुम हो कि अभी तक इस बात को लेकर? अंबिका ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, अभी तुमने कहा ना कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं तुम पर भरोसा कर पाऊँ, तो बस ये बात सच है मेरी तरफ से। और क्यों करूँ मैं तुम पर भरोसा? तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ था, और फिर तुमने ज़बरदस्ती ही मुझसे शादी की, तो ऐसे में कैसे मैं तुमसे भरोसा कर सकती हूँ? और क्यों मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाऊँगी? मैं बस एक मामूली लड़की हूँ जिसकी लाइफ में अब शायद कुछ नहीं बचा। ये सब बोलते हुए अंबिका की आंखों में मायूसी और बेबसी दोनों ही साथ नज़र आ रही थीं। वेदांश उसकी आंखों में ये नहीं देखना चाहता था। उसे बहुत बुरा लगा। वेदांश ने अपने दोनों हाथ अंबिका के दोनों गाल पर रखे और धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाकर आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी लाइफ बन चुकी हो और तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा? अच्छा ये बताओ, क्या चाहती हो तुम? ऐसा क्या करूं मैं जिससे तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा हो जाए? 1% भी, कहीं से शुरुआत तो हो। चलो बताओ, ऐसा क्या करूं मैं? जो तुम कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या चाहती हो तुम? वेदांश की आंखों में वो मजबूती देखकर अंबिका में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसके मन में सवाल फिर भी उठ रहे थे। क्या तुम सच में कुछ भी करोगे सिर्फ मेरा भरोसा जीतने के लिए? बताओ, जो मैं बोलूंगी वो करोगे? वेदांश ने झट से कहा, हाँ, तुम जो भी चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अंबिका की आंखों में चमक थी। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। मुझे अपने घर वालों से बात करनी है और उनसे मिलने भी जाना है। पापा हॉस्पिटल से घर चले गए होंगे। क्या तुम आज मुझे मेरे घर जाने दोगे? इस सवाल पर वेदांश एकदम चुप हो गया। अंबिका ने उसे इस तरह से चुप देखकर यही समझा कि वो बस ऐसे ही बातें बोल रहा था। वो उसे उसका फोन नहीं देगा और ना ही उसे उसके घर जाने देगा। इसलिए अंबिका दर्द में हल्का सा मुस्कुराई और फिर सीधी होकर बैठ गई और साइड में पड़ा हुआ अपना नाइट सूट पहनने लगी। वेदांश के हाथ की पकड़ उसकी कमर पर ढीली हो गई थी। अंबिका को उठने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। वेदांश अभी भी थोड़ा सोच में डूबा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट फैसला है। अपने पूरे कपड़े पहनने के बाद अंबिका बिस्तर से उतरकर साइड में खड़ी हुई और उसने एक नज़र वेदांश की तरफ देखकर उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसलिए मैंने बस ये ऐसे बोल दिया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरा भरोसा जीतने की कोई ज़रूरत है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस इसी में हम दोनों की भलाई है फिलहाल। इतना कहकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए अंबिका वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही वेदांश ने एक झटके से अपने आप को सीधा किया और बिस्तर से उठकर पास में रखा अपना फ़ोन उठाया। उसने एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में एक नया जुनून था। वो अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुका था कि उसे अंबिका को भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा। नंबर डायल करके जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, वेदांश बोला, हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज़ गंभीर थी। वेदांश फ़ोन पर कुछ बातें करने लगा लेकिन अंबिका को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वेदांश क्या कर रहा है। वो सीधा वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ी हुई। क्या कर रही हूँ मैं, उसने आईने में अपने अक्स से पूछा। क्या ये सब सही है? क्या मुझे अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए? लेकिन क्या है मेरे मन में, मुझे खुद भी तो ठीक से नहीं पता है। क्या मैं उसे डेविल से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई इतना अच्छा इंसान नहीं है जिससे किसी को भी प्यार हो जाए, और मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वो मुझे यूज़ करता रहे और मैं उसके प्यार में पड़ जाऊँ। अपने मन में चल रही बातों को समझाते हुए अंबिका ने किनारे किया और फिर वो अपने कपड़े उतार कर सीधा शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर का पानी उसके बालों से होते हुए उसके चेहरे पर गिर रहा था। शावर का ठंडा पानी उसके मन में लगी हुई आग को कुछ हद तक कम करने में मदद कर रहा था। अपने बालों में हाथ डालते हुए अंबिका ने चेहरे पर आए सारे बालों को माथे से पीछे किया और एक गहरी सांस लेकर कुछ देर उसी तरह खड़ी रही। क्रमशः